हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 107 सुनैना भी आदित्य के साथ उस कमरे में आई और चारों तरफ नज़रें घुमाकर कमरे को देखा। वो वहाँ की सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे सामने की दीवार पर एक आदमी की तस्वीर लगी हुई दिखी। तस्वीर पर काफ़ी पुरानी और सूखी हुई फूलों की माला चढ़ी हुई थी। इसे देखकर सुनैना समझ गई कि ये जो भी हैं वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये कौन है? इसी सवाल को लेकर वो आदित्य की तरफ आंखों में आंसू लिए देखने लगी। ये तस्वीर जो तुम सामने की दीवार पर देख रही हो वो मेरे डैड की है। सुनैना की नज़रों का मतलब अच्छी तरह समझते हुए आदित्य ने उससे कुछ पूछने से पहले ही तस्वीर के बारे में बताया। आदित्य की बात सुनकर सुनैना चौंक कर आदित्य के चेहरे की तरफ देखी। ये बात बोलते वक्त आदित्य की आंखों में उसे एक अलग ही दर्द नज़र आया। सुनैना उसे इस तरह देख नहीं पाई और आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे डैड के साथ? उनकी डेथ कैसे हुई? आदित्य को इस हालत में देखकर सुनैना आगे कुछ और जानने के लिए उसे मजबूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि यही मौका है। अगर उसने आदित्य को कमज़ोर पड़ने दिया तो शायद वो कभी इन सब के बारे में बात नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने बात जारी रखते हुए आदित्य से सवाल किया, एक्सीडेंट? जहाँ तक मुझे पता है उनकी डेथ एक एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन उसी से एक दिन पहले उन्होंने मुझसे बात की थी। वे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे और उसी स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। नशे में होने की वजह से उस दिन डैड अपनी कार ठीक से ड्राइव नहीं कर पाए और उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। इतना बोलते बोलते आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और वो पास पड़े एक काउच पर निढाल सा बैठ गया। मतलब तुम उनके साथ नहीं थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ? इतनी बात सुनने के बाद सुनैना थोड़ा सोचती हुई आदित्य के सामने आई और उससे पूछा, नहीं, मेरा कॉलेज फर्स्ट ईयर था और मैं हॉस्टल में ही रहता था, क्योंकि घर पर मुझे हमेशा माँ की याद, मेरा मतलब है घर पर पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाती थी, और डैड के एक्सीडेंट के बाद मैं उनसे सीधा आईसीयू में मिला था, वो भी उनकी डेथ के कुछ घंटों पहले ही। इस बात का मुझे आज भी अफसोस है। सुनैना की बात सुनकर आदित्य काफ़ी मायूसी से ये सारी बातें याद करता हुआ बोला। वो सब कुछ याद करते हुए पिछला वक्त उसकी आंखों के सामने घूम गया। एक एक पल उसे इस तरह याद आने लगा जैसे सब कुछ कल की ही बात हो। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और इस सब याद करके बेचैनी की वजह से उसके हाथ पैर कांपने लगे और चेहरे पर ज़्यादा पसीना भी आने लगा। आदित्य को इस हालत में देखकर सुनैना अब उसे आगे कुछ नहीं पूछी और उसे अपने गले से लगा लिया। सुनैना के एक हाथ में प्लास्टर था, इसलिए उसने एक हाथ से आदित्य की पीठ पर हाथ रखते हुए उसे अपने करीब किया और धीरे से समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं आदित्य, तुम रो सकते हो, तुम्हें सब कुछ अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, तुम अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इसीलिए तुम इस बारे में बात नहीं करते। अब ये सब तुम्हें बहुत तकलीफ़ देता होगा, मैं समझ सकती हूँ, मैंने भी अपनी मॉम को खोया है। सुनैना की ये सारी बातें आदित्य के उन जख्मों पर मरहम की तरह काम की और उसकी बेचैनी काफ़ी कम हो गई। वो भी सुनैना को कस कर पकड़कर अपने गले से लगा लिया और उसके कंधे पर अपना सर रखकर कुछ देर तक यूं ही रोता रहा। उसे सुनैना का उसे समझाना बहुत अच्छा लगा और उसके साथ उसे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो उसका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने का मन हो रहा था, लेकिन सुनैना के गले लगने पर अब आदित्य का ध्यान उस तरफ से हट गया था। तभी जैसे आदित्य को एकदम से कुछ याद आया और वो सुनैना से दूर होकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ उसके गाल पर रखकर काफ़ी ज़्यादा घबराहट और डर के साथ पूछते हुए बोला, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी ना सुनैना, डैड और भाई की तरह, और फिर माँ भी, क्योंकि अगर तुम चली गई तो मैं अब जिंदा नहीं रह पाऊँगा। बहुत दिनों से अकेला हूँ, लेकिन और नहीं रह सकता अब सबकी यादों के साथ, और नहीं सह सकता ये सब। आदित्य उसी तरह काफ़ी घबराहट और बेचैनी के साथ सुनैना से पूछा। सुनैना ने उसके कांपते हुए हाथों पर अपना एक हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, मैं कहीं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं हमेशा कहीं भी नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी, सच में प्रॉमिस करो। सुनैना की बात पर आदित्य ने अपना हाथ आगे करते हुए उसे प्रॉमिस करने के लिए कहा। सुनैना मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख कर बोली, पक्का वाला प्रॉमिस। तो उसे इस तरह देखकर आदित्य भी मुस्कुराने लगा और वो खुश होते हुए काफी प्यार से सुनैना को अपने गले लगा लिया। सुनैना आदित्य के गले लगकर उसका सारा दर्द और बेचैनी खुद भी महसूस कर पा रही थी। उसे इस तरह गले लगने से आदित्य की सारी तकलीफें, दर्द जैसे कम हो रहे थे और उसे बहुत ही अलग तरह का सुकून मिल रहा था सुनैना के साथ, और दोनों काफी देर तक इस तरह एक दूसरे के गले लगे हुए बैठे रहे। आउच, आ! उसी तरह से काफी देर तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने की वजह से सुनैना का प्लास्टर वाला हाथ ज्यादा दर्द करने लगा, तो वो हल्का सा कराहती हुई बोली, क्या हुआ? सुनैना की इस तरह की दर्द भरी आवाज सुनकर आदित्य उसकी तरफ देखते हुए फिक्रमंदी से पूछा, नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, वो तो बस यही हाथ का प्लास्टर थोड़ा सा। सुनैना अपने हाथ पर बंधी प्लास्टर की तरफ इशारा करते हुए बोली, आई एम सो सॉरी, मैं हमेशा ही कैसे भूल जाता हूँ, तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हुई और मैं अपनी ही तकलीफ में खोया रहता हूँ, आई एम सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। सुनैना की बात पर आदित्य फिर से ज्यादा गिल्ट खुद पर लेते हुए बोला, अरे नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, वो तो बस। इतना बोलते हुए सुनैना सीधा होकर बैठ गई। आदित्य को समझ आया कि शायद गले लगने की वजह से उसका प्लास्टर तकलीफ दे रहा होगा। ये सोचकर उसे फिर से ज्यादा बुरा लगने लगा और वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन फिर तभी जैसे उसे कुछ याद आया और वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया और सुनैना को भी अपने साथ वहाँ से चलने को कहा। आदित्य सुनैना को अपने साथ उस कमरे से बाहर ले आया और दूसरी लेफ्ट साइड पर बने एक बड़े से कमरे के अंदर ले जाते हुए बोला, तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं बस अभी आता हूँ। अरे लेकिन तुम कहाँ? आदित्य के इस तरह सुनैना को वहाँ पर अकेले छोड़कर जाने पर सुनैना आदित्य का हाथ पकड़ते हुए उसकी तरफ देखकर पूछी, तो बड़े ही प्यार से आदित्य ने अपना हाथ उसके सिर पर रखते हुए कहा, बस अभी आया मैं 2 मिनट में। तो उसके इस तरह बोलने पर सुनैना भी उसे जाने से नहीं रोक पाई और ना ही उससे और कोई सवाल किया। आदित्य वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सुनैना को कुछ और काम नहीं था, तो वो इधर उधर कमरे में टहलते हुए सारी चीजें देखने लगी। उस कमरे में आरामदायक सारी चीजें थीं, लेकिन किसी का कोई पर्सनल सामान नहीं था, शायद इसलिए कि वो बंगला और वो कमरा भी इतने दिनों से खाली था और कोई भी वहाँ पर नहीं रहता था, तो इसीलिए ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। क्रमशः, हाँ तुम आ गए, आप सभी का मोस्ट अवेटेड एपिसोड, हे, जिसका आप सभी को इतने दिनों से इंतजार था। तो कुछ इस तरह का है आदित्य का पास्ट, और हमें नहीं लगता कि आदित्य पूरा सब एक साथ ही बताने के मूड और हालात में है, लेकिन इतना ही बहुत है, कुछ तो पता चला आखिर हमारे मिस्ट्री बॉय के बारे में। हाँ हाँ, और भी धीरे धीरे पढ़ते खुलेंगी, बस जुड़े रहिए आप सब आदित्य और सुनैना से, और कहानी पढ़कर कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लगा ये भाग आप सभी को और कैसी लग रही है अब तक की ये कहानी। कन्ना।